आज है 15 मई दिन रविवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। सिवान में पत्रकार की हत्या के विरोध में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन, तो दो संदिग्ध लोगों से हुई पूछताछ।
घर के लोगों को ये विश्वास नहीं है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम कर पाई। उसे घर के लोगों की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कर। मैं भी घर के लोगों के साथ सहमति जताता हुआ हम लोग ये मांग करते हैं।
चुनाव आयोग ने जयललिता और करुणानिधि के खिलाफ नोटिस जारी किया। मिलवाएंगे आपको ऐसे शख्स से जिसने यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की लेकिन पढ़ाई के दौरान क्यों छिपाई अपनी पहचान।
तो मैं रिसोर्स का नाम लेता था, अब दो तीन बार मैंने मेज चेंज की तो वहाँ मुझे मैं खुद का नाम नहीं बताया क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मुझे पता नहीं था कि सामने वाले इंसान का माइंडसेट कैसा है।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। सिवान के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार साह ने बीबीसी को बताया कि दोनों लोगों की गिरफ्तारी बीते कल हुई है। पुलिस ने जांच में बाधा का हवाला देते हुए इनकी पहचान और गिरफ्तारी की जगह बताने से इनकार किया है। हिंदुस्तान अखबार के लिए काम करने वाले राजदेव रंजन की बीते शुक्रवार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मिस्र की एक अदालत ने पिछले महीने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के दो द्वीपों को सऊदी अरब को देने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 51 लोगों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। मामला लाल सागर के दो द्वीपों को सऊदी अरब को देने के फैसले से जुड़ा है। आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति ने दो निर्चिंद द्वीप टीरान और सानाफिर को निवेश के बदले सऊदी अरब को सौंपा है, जबकि मिस्र सरकार का कहना है कि ये दो द्वीप हमेशा से सऊदी अरब के थे लेकिन मिस्र साल 1950 से इनकी देखभाल कर रहा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने आदेश दिया है कि देश में जिन कारखानों ने काम करना बंद कर दिया है उनकी संपत्ति जब्त करके उनके मालिकों को जेल भेजा जाए। अपने समर्थकों को भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए देश में उत्पादन के साधनों को अपने हाथों में लेना होगा। उधर उनके विरोधी राजधानी काराकस में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको सत्ता से बाहर करने के लिए रिकॉल वोट यानी जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। बीते शुक्रवार राष्ट्रपति मादुरो ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। विपक्ष के नेता एनरिके कैप्रिलेस ने कहा है कि इससे पहले की देर हो जाए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा,
queremos ir a validar nuestra firma.
यदि आप गणतांत्रिक रास्ते ही बंद कर देंगे तो हमें नहीं पता कि इस देश का क्या होगा। वेनेजुएला एक ऐसा बम बन गया है जो कभी भी फट सकता है। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो और इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग साल 2016 में जनमत संग्रह के पक्ष में संगठित हों। ये थे वेनेजुएला के विपक्ष के नेता एनरिके केप्रिलेस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से मिल रही खबरों के अनुसार खुद को इस्लामी चरमपंथी समूह कहने वाले इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने पूर्वी शहर दल अर्जूर के एक अस्पताल पर हमला किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले में लगभग 20 सरकार समर्थक लड़ाके मारे गए हैं जबकि अस्पताल के कई कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। हमला दर अल्जूर के पश्चिम में अल असद अस्पताल के पास हुआ। माना जा रहा है कि शहर का आधे से ज्यादा हिस्सा इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है और यह समूह पूरे शहर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने नाइजीरिया में चल रहे चरमपंथी विरोधी समिट में कहा है कि हालांकि इस्लामी चरमपंथी समूह बोको हराम के खिलाफ सेना ने अच्छी बढ़त हासिल की है लेकिन वो अभी भी एक खतरा बना हुआ है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी राज्य के हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी और नीतीश सरकार का पुतला फूकेगी। वहीं पत्रकार संगठनों ने भी रंजन की हत्या को लेकर पटना में अलग अलग विरोध कार्यक्रमों की रणनीति बनाई है। पुलिस का कहना है कि उसने दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ चल रही है। सुनिए मनीष चांडले की ये रिपोर्ट।
पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हुए आज प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं पत्रकार संगठन भी अपना आक्रोश जताने के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। रंजन का अंतिम संस्कार कल उनकी शादी की सालगिरह के दिन हुआ। उनकी हत्या शुक्रवार को हुई थी। पुलिस अब तक हत्या के मकसद पर से पर्दा नहीं उठा सकी है। हालांकि इस मामले में सिवान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार के DGP PK ठाकुर ने कहा है कि कुछ समय में पुलिस सारी स्थिति साफ कर देगी।
काम हो रहा है, कुछ समय बाद हम लोग सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं वो सभी कानूनन उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई संभव है वो पूरा भी कर लिया जाए।
राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने घटना के बहाने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जबकि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने घटना की निंदा की है।
मैं इसकी निंदा करता हूँ, तीव्र भर्त्सना करता हूँ। हत्यारों का भी, पत्रकारों को भी लोग नहीं बचते हैं और सरकार पुलिस न स्वतंत्र है। जो कल्प्रिट है, क्या कारण है नहीं है उसको देख करके कार्रवाई करें।
समूचे विपक्ष ने इस घटना के बहाने यह कहते हुए सरकार को घेरा है कि सूबे में कथित जंगल राज की वापसी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने तो यहां तक कह डाला कि सूबे में राक्षस राज है। इस बीच कल जहां एक ओर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की युवा इकाई ने पटना में कैंडल मार्च निकाला, तो बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सिवान जाकर मृतक पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों के परिजनों के हवाले से इस मामले की CBI जांच की मांग की।
घर के लोगों को भी संदेह है कि शक की सुई जेल में बंद जो बड़े बाहुबली लोग हैं उन पर शक की सुई जाती है और इसलिए तो ये जांच का विषय है। लेकिन घर के लोगों को ये विश्वास नहीं है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम कर पाए। उसे घर के लोगों की मांग है कि पूरे मामले की CBI जांच कर। मैं भी घर के लोगों के साथ सहमति जताता हुआ हम लोग ये मांग करते हैं।
रंजन की हत्या के विरोध में राजधानी पटना सहित सूबे के कई हिस्सों में पत्रकार अपना आक्रोश जताने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कल सड़कों पर उतरे। पटना में पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात की। सिवान में भी पत्रकारों ने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले मार्च निकाला। यूनियन के संयोजक अरविंद कुमार पांडे ने संगठन की मांगों के बारे में बताया।
कैंडल मार्च या मार्च का बिल्कुल साफ उद्देश्य है कि पत्रकार के साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके हथियारों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
भाजपा की सिवान जिला इकाई ने आज घटना के विरोध में सिवान में महाधरना आयोजित किया है। साथ ही भाजपा हर जिला मुख्यालय में नीतीश सरकार का पुतला भी फूकेगी। वहीं पटना में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ बिहार और साउथ एशियन वुमेन इन मीडिया के बैनर तले अलग अलग मार्च भी निकाला जाएगा। इसके अलावे इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित करेगी।
राजदेव रंजन की हत्या के विरोध में BJP का प्रदर्शन आज, ये थी मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट। और अब बात विधानसभा चुनावों की। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की अरवाकुरुची सीट पर सोमवार को होने वाला विधानसभा चुनाव टाल दिया है। चुनाव आयोग को ये शिकायत मिली थी कि उम्मीदवार वोटरों को पैसा बांट रहे थे, जिसके बाद ये सीट पर चुनाव टाला गया। अब इस सीट पर 23 मई को मतदान होगा। उधर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री जयललिता और ADMK के नेता करुणानिधि के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यहां 234 सीटों के लिए 16 मई को मतदान होगा। सीधे चलते हैं तमिलनाडु BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, ये बताइए कि ये कारण बताओ नोटिस जो जारी किया है तमिलनाडु के दो प्रमुख नेताओं के खिलाफ, क्या कारण बताया गया है?
जो ये नोटिस है सुशीला, इसके पीछे का मकसद ये है क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने, AIDMK और DMK ने, जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें इतने जबरदस्त, इतने ज्यादा तादाद में जो वादे किए हैं उसको देकर इलेक्शन कमीशन उनसे ये जानना चाहता है कि आप जितने वादे हैं इसके लिए जो रकम चाहिए वो कैसे मीट करेंगे, वो कैसे आप इकट्ठा करेंगे, और वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन फॉलो करती हैं या चीजें नहीं करती हैं। और एक IAS अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, देव श्याम, और उन तमाम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की है कि मतलब बहुत ज्यादा पैसे का इस चुनाव में प्रयोग हो रहा है। और इसी से जुड़ा अरावकुरुची असेंबली जो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र जहां पर चुनाव टाला गया, जैसा आपने बताया अभी 23 मई को वहां पर अब मतदान होगा, वो भी मामला है, क्योंकि उस जिले में करूर में है, दरअसल वो करूर में मैं परसों था, उस पूरे इलाके में वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं कि साहब वहां इतना पैसा मिल गया, वहां 1.5 करोड़ बरामद हुआ है, उस चुंगी पे 2 करोड़ बरामद हुआ है। तो चुनाव आयोग के हिसाब से वहां अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हो चुका है जो इलीगल है और कैश में था, तो उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया।
जी, आपने कैश जब्त करने की बात की है, वहीं तमिलनाडु में कल ही चुनाव आयोग ने करीब 570 करोड़ का कैश जब्त किया है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास?
जी, जब से 570 करोड़ रुपए जब्त हुआ है उसके बाद से हड़कंप मचा रहा है कि पहले तो इतना पैसा आया कहाँ से। जाहिर है 570 करोड़ रुपए जुटाना आसान नहीं है, वो भी 3 शकों में, लेकिन जो राज था वो बाद में समझ में आया। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा था जो कोयम्बटूर से एक दूसरे करेंसी चेस में जा रहा था विशाखापट्टनम में, और SBI का कहना है कि RBI गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो पैसा ट्रांसफर हो रहा था।
जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे तमिलनाडु से नितिन श्रीवास्तव। उधर केरल में काफी तीखा चुनाव प्रचार हुआ। कल तमिलनाडु और केरल में प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार थमने के पहले वहाँ रैली भी हुई। यहाँ 140 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा केरल में थे। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने डॉक्टर शर्मा से बात की और पूछा कि केरल में उनकी पार्टी चुनाव प्रचार में जितना दम लगाया है, क्या नतीजों में उसका असर दिखेगा?
देखिए, केरल में पिछले 67 वर्षों से सरकारें UDF, LDF और कांग्रेस की काम कर रहे हैं, उनके प्रति वहाँ की जनता में एक बेहद भयंकर बदलाव आया है। मैं लगभग 12 विधानसभा क्षेत्रों में गया जहाँ सभाएं की, और इससे पहले भी मैं लगभग पिछले 3 महीने में करीबन 2 बार पैर केरला गया, अपने टूरिज्म विभाग और कुछ जगह पर्यटन की दृष्टि से, पद्मनाभा स्वामी और गुरुवार टेम्पल के नाते से। मैंने महसूस किया कि लोगों के दिल में अब ये बात आ चुकी है किस तरह से केरल में बदलाव की जरूरत है। वहाँ के लोगों में वहाँ की सरकारों के प्रति एक भाव पैदा हो चुका है। आज जब हमने केरल की कुछ सभाओं में ये बात करी कि भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 पार्लियामेंट सीट पर थी, आज 282 पर है। राजनीति में ऐसे बदलाव होते रहते हैं। मैं समझता हूँ इसके परिवर्तन केरल की जनता चाहती है और परिवर्तन होगा भी। उसकी शुरुआत हमें 19 तारीख को होने वाले नतीजों से मिलेगी। वहाँ की जनता भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहती है।
लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ उसका स्वरूप बड़ा तीखा था, और खासतौर पर प्रधानमंत्री के एक बयान को जिसमें सोमालिया से केरल की तुलना की गई थी, बड़ा भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, तो आपको क्या लगता है कि कुछ असर होगा उसका?
देखिए, केरल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 91% लोग वहाँ लिटरेट है, और मुझसे भी सवाल का जवाब पूछा गया। मैंने कहा वहाँ की सरकारी की साइट पर, वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है कि केरल में इन्फेंट मृत्यु दर 14.1% है, जबकि वहाँ के कुछ आदिवासी जो इलाका है हमारा उसमें ये 66% है तक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि पूरा केरल किसी तरह से सोमालिया से कंपेयर किया, उन्होंने एक हिस्से के इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को बारे में कहा। इसलिए उनकी भाषा को बदल के पेश करना राजनीति, ये कोई पढ़े लिखों का प्रदेश है, ये एजुकेटेड लोगों का प्रदेश है, उनको भावनात्मक मुद्दों से बहाया नहीं जा सकता। मेरे पास पेपर है, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि उनकी साइट पर है, सब कोई भी देख सकता है उनसे।
तो अब आपको क्या उम्मीद है कि केरल की जमीन पर कमल खिलेगा? 140 सीटों में से कितनी आपकी झोली में आएंगी?
देखिए, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिस तरह से लोगों में जोश देखा, आज मैं अंतिम समय 5 बजे भी जब वहाँ थे तो सभी पार्टियां लगभग अपने रोड शोज कर रही थी। जितना रोड शो किसी और पार्टी में था उतनी ही ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस रोड शोज में थे। हम लोगों ने ये बात करी केरल के लोगों के सामने कि एक भी मंत्री या मंत्रालय के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, तो लोगों ने इसको बात को स्वीकार किया। क्लीन गवर्नेंस, काम करने वाली गवर्नेंस, केरल और देश के साथ मिलकर आगे ले जाने वाली गवर्नेंस की जरूरत है।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को उम्मीद है कि केरल की जनता देगी उनका साथ। उधर केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बसे आदिवासी इलाके अट्टापाड़ी की आधी आबादी शायद इस चुनाव में वोट नहीं डालेगी। दरअसल यहां की औरतों की मांग पर केरल सरकार ने साल 1995 में अट्टापाड़ी में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, पर इलाके में शराब की लत ऐसे फैली कि मर्द तमिलनाडु की दुकानों में से शराब बनाने लगे, और पिछले 5 साल में यहाँ 2 डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़े। अब यहाँ की औरतें नाराज हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार उनके मर्दों में बीमारी की तरह फैली हुई शराब की लत से छुटकारा दिलाने में उनकी मदद नहीं कर रहा। केरल से बीबीसी संवाददाता दिव्यार्या की ये विशेष रिपोर्ट।
Father and mother, either you, Moribo, F, A,
5 मर्द, 2 की पत्नियां और 1 की बेटी भी, ये सब यहाँ शराब पीने से होने वाली परेशानियों के बारे में एक काउंसलिंग का लेक्चर सुन रहे हैं। विवेकानंद मिशन की ओर से चलाए जा रहे इस डी एडिक्शन सेंटर में रोजाना 4 नए आदमी इलाज के लिए आते हैं। काउंसलर विजय कुमार बताते हैं,
ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിക് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൾ, അവരുടെ വൈഫ്, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി, അത്ര ആൾക്കാരെയാണ് 21 ദിവസം ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഈ 21 ദിവസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓത്തേ ഏക ആത്മിക്കും ഓ ഫാമിലിക്ക് ഫാമിലി സബ് മിൽക്ക് ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറേ ഫാമിലിക്ക് ഭീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദേക്ക് ബച്ചോക്ക് ഭീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദേക്ക് ആത്മിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദേക്ക് കറേ ബോൾ ജാദാ വൈലൻ്റ് ഓത്തേ ഉസ് ലോക്കോ ഖാനക്കെ സാത്ത് മെഡിസിൻ മിൽക്ക് ദേതോ.
लेकिन प्रोग्राम छोड़ के जाने के बाद मर्दों का फिर से शराब की लत पकड़ लेना आम है। 34 साल के विजू को भी ये लत लग गई थी। रोज 400 कमाते और उसमें से 300 रुपए शराब पर ही उड़ा देते। परेशानी का सबब दरअसल पड़ोस के स्टेट तमिलनाडु में है।
रोज
तो यहाँ पर तो बंद हो गई लिकर, तो कैसे मिलती थी?
ये पाटे पड़ी थी नम कोर काला कटे थी बंद ऐसे ले पिने नहीं ये अंग्रेज तो पुरता
तो ये तो हम तमिलनाडु दिकरे को लाए हैं टीवी करे अब तेरे पाटे चारे करे कल बेला अंडा मिला.
अच्छा, ये मैं बोल रहा था मैडम, मैं इधर से 15 किलोमीटर दूर जाके आने की बॉर्डर में जाके पीता हूँ, फिर अंदर का लोकल लिकर मिलता था वो, उसका हमारा नाम है पटाचेरे, वो भी मैं पीता था, फिर इधर कल्लुवारा लोकल में मिलते थे वो भी मैं पीता था, बोलता था।
विजू के मुताबिक शराब की आदत ऐसी थी कि कुछ होश नहीं रहता था। घर में पत्नी को मारना आम था, बच्चे या उनकी जिम्मेदारी, पढ़ाई, खाना पीना, किसी बात का एहसास नहीं था। विजू बताते हैं कि दोस्तों के साथ में शुरू हुई ये आदत 10 साल बाद गई, जब एक दिन भगवान का डर मन में आया, साबरीमला मंदिर गए और शराब छोड़ दी। वैसे एक वजह इलाके में बना औरतों का ग्रुप थाईकुलम संगम भी था। मारुति ने इस ग्रुप की शुरुआत भी की और इस वक्त उसकी सेक्रेटरी भी हैं। बताती हैं कि साल 2002 में एक बार शराब की बोतल के लिए ऐसी लड़ाई हुई कि लोगों ने एक लड़के पर वही शराब डालकर उसे जिंदा जला दिया। बस तभी औरतों ने तय किया कि अब उन्हें कुछ तो करना होगा।
நாம் எதிர்க்காந்த ஒற்றை குறுக்கீரதிருந்து எதிர்க்க முடியாத சமரக்கீராங்கினாரோ சமரக்கீரா
போடுற மேடம் கருக்கந்தர் ஓரத்தில் மந்திரம் ஓரத்தில் தம்கி தேத்தேனா பதிசி தம்கி ஒரு தோர்சர் ஓத்தே இஸ்லே எல்லோ ஏக்கு சபத் லியாத்தா ஹம்லோ சப லடிக்கி லடிக்கி லோக் ஏக் கட்டா கர்க்கே ஹம்லோ உசி பிரசன் கோ ஆகே பட படேங்கே போல்கே ஏக் கட்டா ஓகே ஏ ஸ்ட்ரைக்கு சுரு கர்தியா.
ये आदिवासी इलाका है जहाँ पढ़ाई लिखाई भी कम है और पीढ़ियों से मर्दों में शराब की लत की वजह से अब असर बच्चों पर दिख रहा है। इलाके में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट केरल की एवरेज यानी औसत से भी 3 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से केरल सरकार की तरफ से जब आदिवासी विकास के लिए यहाँ नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो सारा ध्यान शराबखोरी पर रखा, लेकिन मारुति कहती हैं इससे भी कोई खास मदद नहीं मिली। बहुत कोशिशों के बाद पिछले महीने 15 किलोमीटर दूर वाली शराब की दुकान तो बंद हुई, पर अब मर्द तमिलनाडु में ही 40 किलोमीटर दूर वाली दुकान तक जाने लगे हैं। मारुति से बात खत्म हुई तो इतनी देर में हमारे लिए ट्रांसलेशन का काम कर रहे प्रशांत अचानक मुझे किनारे ले गए।
अभी दारू का प्रश्न मैं मेरे नज़र से मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमारा मैं भी एक टाइम से मैं दारू पिया था, अभी नहीं है, मैं भी दारू पिया था उसी टाइम मेरे घर का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मेरा बीवी के साथ मेरे को झगड़ा हुआ था, उसी कारण मेरा फैमिली का पूरा गड़बड़ हो गया, टूट गया। ये मेरा लाइफ में नहीं, अट्टापाड़ी का एक एक आदमी के पास ये प्रश्न होते रहते।
दिसंबर 2015 में केरल सरकार ने पूरे राज्य में शराब पर आंशिक प्रतिबंध यानी पार्शल बैन लगाया और कहा कि आने वाले 10 साल में ये पूरे बैन में तब्दील कर दिया जाएगा। पर शराब की आदत छुड़वाने का ये तरीका कितना बेअसर हो सकता है ये अट्टापाड़ी के लोग अच्छे से जानते हैं। शायद सरकार उनकी बात एक बार सुन ले तो सही पॉलिसी बनाने में कुछ मदद मिले। दिव्या आर्य, BBC, अट्टापाड़ी, केरल।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। मानसी दास स्टूडियो आ चुकी है समाचार पत्रों के साथ। मानसी,
सुशीला जी, जहां हिंदी के अखबारों में आज चीन भारत सीमा पर सेना बढ़ने की खबर, गाजियाबाद में कल रात हुए हादसे की खबर को पहले पन्ने पर छापा है। अंग्रेजी के अखबारों में आज प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्तव्य को पहले पन्ने पर छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ही श्रेष्ठ हैं कि दंभ से उबरने पर ही झगड़े सुलझ सकेंगे। दिल्ली से छपने वाले संडे पायनियर में मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की एक तस्वीर छापी है जिसमें दोनों हाथ मिला रहे हैं। तस्वीर के साथ उज्जैन सिंहस्थ कुंभ से मोदी के भाषण को पहले पन्ने पर जगह दी गई है और लिखा है कि मोदी ने आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग को बड़ी चुनौती बताया है। दी हिंदू ने पहले पन्ने पर ब्रेन डेड यानी कि ऐसे लोग जिनका दिमाग तो जिंदा है पर शरीर काम नहीं करता, ऐसे लोगों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश के बारे में लिखा है। उत्तराखंड के एक अस्पताल में प्रोजेक्ट री एनिमा के नाम से एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे ऐसे लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकेगा। हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर एक खबर के अनुसार RJD नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक करीबी व्यक्ति से पत्रकार राजदेव रंजन की मौत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हिंदी के अखबारों को देखें तो हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर जगह दी है पेंटागन की एक रिपोर्ट को जिसमें खुलासा किया गया है कि सीमा पर चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है, लेकिन चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका की NSG ने भारत का साथ दिया है। उधर जागरण की दो खबरें आपको बता दूं। पहली खबर है कि दिल्ली के वृद्धाश्रम में गांधी जी के दुलारे कनुभाई पहुंचे हैं। महात्मा गांधी के दुलारे पोते कनुभाई पत्नी शिवा लक्ष्मी के साथ राजधानी के एक गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। बापू के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के बेटे हैं कनु भाई और मदर्स डे के मौके पर ये वृद्धाश्रम में शरण लेने पहुंचे। दूसरी खबर ये है कि हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड पर विद्यार्थियों को एतराज है और विद्यार्थियों ने गत दिनों इसको लेकर विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने छात्रों की मांग को नज़रअंदाज कर दिया था। 200 सीटों वाले हॉस्टल में रहने वाले इच्छुक छात्राओं ने इस नियम को अब वापस लेने की मांग की है। दैनिक भास्कर की एक और खबर है जो आप शायद जानना चाहेंगे। गांधी जी के हत्यारे को पकड़ने वाले रघु नायक की पत्नी जो कि उड़ीसा के कटक में रहती हैं, कटक के से 70 किलोमीटर दूर जोरल गांव में रहती हैं, उन्हें पेंशन मिलती है मासिक 100 रुपए की।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानसी। उधर महाराष्ट्र के जालना में के रहने वाले अंसार शेख एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। उनकी कामयाबी कुछ खास है। अंसार की उम्र है 21 साल और उनके पिता ऑटो चलाते हैं। जब वे पुणे में रहकर पढ़ाई कर रहे थे तो अपनी धार्मिक पहचान छुपाने के लिए उन्हें अपने हिंदू दोस्त का नाम तक इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वो पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में कामयाब रहे। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने अंसार शेख से बात की और सबसे पहले पूछा कि UPSC परीक्षा का नतीजा आने के बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है।
जिंदगी के बारे में मैंने सोचा नहीं था कभी ज्यादा, वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं तो सेलिब्रिटी बन गया हूँ, सब कैमरा, फोटो, इंटरव्यूज, फेलिसिटेशन, बहुत मेरी जिंदगी बदल गई है। इवन मुझे केन्या और दुबई से भी कॉल आए लोगों के, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है।
अच्छा अंसार, जिस तरीके से आपकी कहानी पेश की गई, मीडिया ने बताया लोगों को कि आपको अपना नाम तक बदलना पड़ा और अपनी पहचान को कहीं ना कहीं, जो एक खास धार्मिक आपकी पहचान है, उसको छुपाना तक पड़ा, कितनी सच्चाई है इस बात में जो आप ये कहते रहे हैं? क्या वाकई में इतने हालात मुश्किल थे?
ये जो बात हुई है ये पूरी तरह से सही है, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया, मैंने तो न्यूज चैनल मैंने कुछ देखे नहीं है, तो मैं फिर से, मुझे लगता है कि वो बात दोहराने की जरूरत है, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। जी देखिए, जब मैं पुणे आया तो वहाँ पर मुझे रहने के लिए और मैच लगाने के लिए शुरुआत में मैं जहाँ गया वहाँ पर मुझे रिजेक्ट किया गया, दिया नहीं, मुझे डिनाई किया गया। और उसका रीजन मेरी जो बाय बर्थ आइडेंटिटी थी तो वो थी। तो उसके पश्चात मैंने मेरे दोस्तों से कंसल्टेशन किया, उनसे बातचीत की तो पता चला अब हमारे डिस्कशन में से यही रिजल्ट था कि भाई ये तो सिर्फ आपके साथ नहीं SC ST के साथ होता है, विमेन के साथ होता है, ट्रांसजेंडर्स के साथ होता है। 1-2% लोग हमारे सोसाइटी के आज भी ऐसे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं हमारी आइडेंटिटी की वजह से। मुझे उनसे कोई झगड़ा करना नहीं था, कोई इश्यू बनाना नहीं था, गोल के ऊपर टारगेट करना था, ध्यान देना था। तो मेरे दोस्त का जो नाम था वो नाम में फिर अगर अगली बार मैं जब मिस करता था तो मैं मेरे दोस्त का नाम लेता था। अब 2-3 बार मैंने मेज चेंज की तो वहां मुझे मैं खुद का नाम नहीं बताया क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मुझे पता नहीं था कि सामने वाले इंसान का माइंडसेट कैसा है। हालांकि रूम के लिए एक ही बार वैसी सिचुएशन आई थी क्योंकि बाद में मुझे हॉस्टल मिला, दोस्तों के साथ कमरा मिला, तो रूम के लिए मुझे कहीं कहीं ढूंढना नहीं पड़ा बाद में।
आपने भारत की सबसे मुश्किल कही जाने वाली और सबसे सम्मानजनक कही जाने वाली परीक्षा पास की है, सिविल सेवा में आप जाएंगे, तो क्या ये तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं है कि भारत में मुसलमानों के लिए मौकों की कमी नहीं है, क्या कहेंगे आप?
जी जरूर, और मैं तो बहुत ही पॉजिटिवली इसको देखता हूँ। मैं हमारे पॉलिटिक्स को, हमारी गवर्नमेंट को, जो आज की भी गवर्नमेंट है, हमारी जो पूरी राजनीति है, हमारी जो पूरी सिस्टम है, के प्रति मुझे बहुत ही आदर है, बहुत ही रिस्पेक्ट है। और मैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारे सिस्टम पर पूरा विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी सिस्टम, हमारी राजनीति, हमारी पूरी गवर्नेंस, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा सोसाइटी में है। तो सोसाइटी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा ना कभी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के ऊपर मुझे कभी कुछ गलत एक्सपीरियंसेस कभी नहीं आए जो रिलीजन से रिलेटेड थे।
आप सिविल सेवा के लिए चुने गए हैं, जाहिर तौर पर आपके पास न सिर्फ तमाम शक्तियां होंगी बल्कि मौके भी होंगे चीजों को बदलने के, तो भारत की ऐसी 3 कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा काम करना चाहेंगे?
मैं पहली समस्या तो बताऊंगा कि वो है ओवर सेंट्रिक, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नेंस की, इसके लिए मैं काम करना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहूंगा जिसमें स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। और तीसरी बात जो है वो हमारे देश की जो अलग अलग सेक्शंस है, हिंदू मुसलमान हो या फिर अदर कोई भी सेक्शंस हो, उनके बीच में एक हारमोनी बनाए रखने का मैं प्रयास करूंगा।
ऑटो चालक के बेटे अंसार शेख ने पहले प्रयास में ही की UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास, जिनसे बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा। और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जान लेते हैं मानसी दास से।
बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। राज्य में पत्रकार संगठन भी पत्रकारों की सुरक्षा के मामले को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। राजदेव की हत्या बीते शुक्रवार गोली मारकर कर दी गई थी। अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता और DMK अध्यक्ष के करुणानिधि चुनाव आयोग के जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे। कांस फिल्म महोत्सव के 5वें दिन आज हिंदी फिल्म सरबजीत का प्रीमियर होगा। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, रणदीप हुडा और ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिकाओं में हैं। महोत्सव में आज AJ करदार के निर्देशन में निर्मित पाकिस्तानी फिल्म जागो हुआ सवेरा भी दिखाई जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। इस अवसर पर जनीवा में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर और दुनिया में कई अन्य स्थानों पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खेलों का रुख करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां मोहाली में किंग्स 11 पंजाब सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले एक मैच में मुंबई इंडियंस दिल्ली डेयरडेविल से टक्कर लेगी।
मानसी दास बता रही थी आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। आज से 74 साल पहले साल 1942 में बनी फिल्म कैसाब्लांका के दल में शामिल एकमात्र जीवित बची फ्रांसीसी अभिनेत्री मेडेलेन लेबो की मौत हो गई है। वे 92 साल की थीं। लेबो ने कैसाब्लांका में हम्फ्रे बोगार्ट की ठुकराई हुई प्रेमिका का किरदार निभाया था। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मिस्र की एक अदालत ने पिछले महीने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी के 2 द्वीपों को सऊदी अरब को देने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 51 लोगों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ विश्व भारती में सुबह 8 बजे यानी अब से बस 1 घंटे बाद फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।